对。那个龙王是穿。सभी लोग क्लैप करेंगे साथ में, है ना, ताली बजाएंगे और भगवान के नामों का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ, तू एक बार आ जा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आ जा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आ जा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आ जा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आ जा गिरिराज की शरण में, 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 एक बार आ जा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आ जा गिरिराज की शरण में, गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन, गिरि गोवर्धन, गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन, गिरि गोवर्धन, गिरि गोवर्धन, गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन, गिरि गोवर्धन, गिरि गोवर्धन, गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री राधा रमन नंदलाल मेरो है, श्री राधा रमन नंदलाल मेरो है, गोविंदा मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंदा मेरो है गोपाल मेरो है, ये बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, ये बाके बिहारी, ये राधा रमन नंदलाल मेरो है, ये राधा रमन नंदलाल, गोविंदा मेरो है गोपाल मेरो है। बोलो राधा रमन नंदलाल मेरो है, श्री राधा रमन नंदलाल, जया गिरि गोवर्धन, गिरि गोवर्धन, गिरि गोवर्धन जया गिरि गोवर्धन, जया गिरि गोवर्धन, गिरि गोवर्धन, गिरि गोवर्धन जया गिरि गोवर्धन, जया जया प्रभुपाद, प्रभुपाद, प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। गिरिराज गोवर्धन की, गिरधारी लाल की, श्याम सुंदर की, हरि बोल, प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। तो आप लोगों को आनंद आ रहा है? ठीक है, तो ये जो जगह है इसको बोलते हैं कुसुम सरोवर। क्या बोलते हैं? तो प्रभु जी ने बहुत सुंदर लीला बताई। तो कुसुम सरोवर की लीला बताने से पहले आपको बता दें कि हम यहाँ पर तीन चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला, गोवर्धन की महिमा जो हमने सुबह सुनी, उसका थोड़ा एक्सटेंशन पार्ट हम आपको सुनाएंगे, और साथ में कुसुम सरोवर की महिमा, कुसुम सरोवर में हम क्यों आए हैं, और इसके बाद जो हम जगह जाने वाले हैं राधा कुंड और श्याम कुंड। तो सबसे पहले गिरी गोवर्धन की एक बहुत सुंदर कथा आपको बताते हैं कि एक बार मध्य प्रदेश के एक भक्त थे, उनका नाम था विजय। क्या नाम था?
विजय।
हाँ, तो विजय एक बार आए गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए। तो जब वो यहाँ की परिक्रमा कर रहे थे तो उस समय उनके मन में एक ख्याल आया जो आज बहुत सारे भक्तों के मन में आया सुबह, कि यहाँ से एक शिलाखंड लेकर मैं अपने पॉकेट में रख लेता हूँ, घर ले जाता हूँ, अपनी जेब में रख लेता हूँ। लेकिन शिलाओं को ले जाना अलाउड नहीं है। शिला तभी ले सकते हैं जब या तो आप योग्य पद्धति से उसकी पूजा कर सकें, क्योंकि शालिग्राम और गिरिराज प्राण प्रतिष्ठित विग्रह हैं, उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है। तो इसके कारण हमें क्या करना चाहिए कि जब हम योग्य हों, या तो हमें गुरु और आचार्यों के द्वारा भेंट किया जाए प्रसाद के रूप में, या फिर हम जो है इस योग ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए हों, तब हम उसकी सेवा कर सकते हैं, अन्यथा हम उसकी सेवा करने योग्य नहीं। तो अपने हिसाब से वो पॉकेट में रख के ले जा रहे थे, और जैसे ही लेके गए तुरंत थोड़ी देर बाद उनको इस परिक्रमा मार्ग में रात्रि के समय क्या मिला? एक राक्षस। डरावनी कथा है ये भूतों की, भगवान की तो बहुत हो गई, भूत की कथा है, राक्षस। और बताते हैं कि उस राक्षस के तीन मुख थे। कितने?
तीन।
हाँ, और छह जो तो है उसके पैर थे, छह हाथ थे उसके, और बताते हैं कि उसके छह वो टांगे भी थी, छह टांग, छह हाथ और तीन मुंह। हाँ, और लाल लाल आंखें। ऐसा व्यक्ति मिल जाए तो क्या करेंगे आज? हाँ, पक्का? अरे प्रभु जी हम दिल्ली जा रहे हैं, छोड़ दो,
ऐसा हो गया नहीं, हरे कृष्ण निकले गए, भागो,
भागो फटाफट, भागो जल्दी, भागो, है ना?
खड़े होके वहाँ हरे कृष्ण हो सकता है?
नहीं होगा,
नहीं होगा, होना चाहिए। तो ऐसे ही विजय घबरा गए देख के राक्षस ने क्या कहा, तुमको खा जाऊंगा। जब इस तरह से उसने राक्षस ने बोला तो विजय घबरा गया बुरी तरह से, और उसने क्या किया, अपनी पॉकेट से शिला निकाली और खींच के उस राक्षस को दे मारा, तड़ाम। जैसे ही उसके मुंह पे मारा तो क्या हुआ, वो व्यक्ति फेंट हो गया राक्षस, एक ही बार, वन शॉट, एक बार में, और गिरने से उसके शरीर से एक बहुत ही सुंदर युवक प्रकट हुआ। तो विजय ने पूछा तुम कौन हो? तो उसने बताया कि देखिए मैं जो हूं एक व्यक्ति था जो कि राक्षस की योनि में बंधा हुआ था, और जो ये शिला है जैसे आज कुछ भक्तों ने उनको गले लगाया, उनका स्पर्श किया, बताते हैं कि गिरी गोवर्धन का एक बार स्पर्श करने से कितनी सुकृतियां प्राप्त होती हैं। तो उसका वर्णन गर्ग संहिता में आता है कि 1000 ब्राह्मणों को दान देने के बराबर एक बार गोवर्धन शिला को स्पर्श करना है, और 10 मिलियन गायों का दान देना एक बार गोवर्धन शिला स्पर्श करने के बराबर है, और 10 मिलियन बताते हैं कि जो सुकृतियां इकट्ठी होती हैं कहां, अनेकों तीर्थों में स्नान और भ्रमण करने से, 10 मिलियन बार टाइम्स जब हम तीर्थों में स्नान आदि करते हैं परिक्रमा, उससे जो सुकृतियां प्राप्त होती हैं वो प्राप्त होती है सिर्फ एक बार गोवर्धन का स्पर्श करने से। गिरी गोवर्धन की, तो गिरी गोवर्धन बहुत ही स्पेसिफिक और क्या कहते हैं मर्सीफुल इनकार्नेशन ऑफ लॉर्ड है, भगवान के बहुत ही दयालु अवतार चेतन महाप्रभु की तरह। तो इसी प्रकार से गोवर्धन शिला से जैसे ही उस राक्षस का स्पर्श हुआ वो क्या बन गया, तीनों गुणों से मुक्त हो गया, राक्षस की योनि से तुरंत छुटकारा पाकर वो क्या बन गया, एक सुंदर युवक बन गया। और उसने अपनी कथा विजय को सुनाई और कहा कि अपने कुछ जन्म पहले मैं क्या था, एक वैश्य परिवार में, बिजनेस फैमिली में पैदा हुआ, और मैंने क्या किया, धन की अधिकता होने के कारण व्यक्ति मद हो जाता है, भ्रमित हो जाता है, ज्यादा पैसा तो हनी हनी हनी, टेक माई मनी मनी मनी, और स्त्रियों के संग आसक्त हो जाता है वो, अपना पैसा दिखाकर स्त्री आकर्षण से वो घिर जाता है और गलत कार्यों में पड़ जाता है। तो इस प्रकार से उसने क्या किया, इतना ज्यादा स्त्री आसक्त हो गया कि उसने अपनी पत्नी और गर्लफ्रेंड्स के चक्कर में अपने पेरेंट्स को क्या किया,
गोली मार दी, मार डाला उनको। और उसके बाद उस स्त्री के साथ भी नहीं रहा, उसको भी त्याग कर क्या बन गया, एक वेश्या के साथ, प्रोस्टिट्यूट के साथ उसने विवाह कर लिया। और उसके साथ रहने के साथ में भी ये नहीं कि वो संतुष्ट हो गया, जब उसकी इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई तो उसने उस वेश्या का भी वध कर दिया, उसको भी मार डाला। और इसके साथ में खूब शराब पीता था रात दिन, और इतना ही पापी व्यक्ति कि इतने पाप सोच भी नहीं सकते लिखने का जितने वो करता था। ऐसा पापी व्यक्ति क्या पाएगा? तो बोलते हैं कि जिस तरह से आज आप कर्म करते हैं उसी प्रकार का आपको फल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने कर्म किए कि एक दिन वो जा रहे थे रास्ते से, और जंगल में उनको एक सर्प ने डस लिया। जब डसा तो क्या प्राप्त होगी योनि? मनुष्य, देवता, वैकुंठ धाम। सांप ही हुए थे पक्का? ठीक है, नहीं, वो हुए थे सुअर। हाँ, जब उनको सांप ने काटा तो उनको सुअर की योनि प्राप्त हुई उनके कर्मों के कारण। और फिर सुअर की योनि से किसी ने प्रश्न पूछा था कि प्रभु जी ये साइकिल चलता रहता है? हाँ, मनुष्य शरीर में एक चॉइस है, अन्यथा अगर आप किसी और योनि में गिर गए मनुष्य शरीर के बाद तो आपको अनेकों योनियों में भ्रमण करना पड़ता है। सुअर के बाद उनको प्राप्त हुआ शेर की योनि, शेर की योनि के बाद फिर उनको सर्प की योनि प्राप्त हुई, और सर्प की योनि के बाद में फिर उनको राक्षस का शरीर प्राप्त हुआ जिसमें वो गंदा खाना खा सकते हैं। और सबसे ज्यादा उनको राक्षस की योनि में पसंद था क्या? ब्राह्मणों को खाना। क्यों पसंद था ब्राह्मणों को खाना, कौन बताएंगे? कितने लोग ब्राह्मण है यहाँ पे, मतलब परिवार के जन्मे, वैसे तो ब्राह्मण बनना मुश्किल, तो क्यों खाया उन्होंने ब्राह्मणों को? ब्राह्मण लोग बताएं क्यों खाया? ब्राह्मण इसलिए खाते थे क्योंकि ब्राह्मण स्वादिष्ट होते हैं। स्वादिष्ट क्यों होते हैं? क्योंकि उनको मिठाई पसंद होती है। तो राक्षस गुलाब जामुन की दुकान पर जाएगा, गुलाब जामुन तो मिलेगा नहीं, तो वो इनडायरेक्टली ब्राह्मण को खाएगा, तो उसके पेट के गुलाब जामुन उसके पास भी चले जाएंगे। तो इसलिए उस राक्षस को ब्राह्मणों को है ना, जैसे स्टिक से खाते हैं ना, पनीर टिक्का क्या खाते हैं वो, हाँ क्या होता है ऐसे, क्या खाते हैं? पनीर टिक्का कबाब। वेजिटेरियन नहीं आता कोई डिश ऐसे? वेजिटेरियन कबाब ऐसे खाते हैं, डंडी से खाते हैं, मैंने नहीं खाया कभी, वो देखा है खाते हुए। हाँ, तो वो कबाब वो खाते हैं। तो उसी तरह से वो ब्राह्मणों को टांग से उठाता था, राक्षस करके फेंक देता हड्डियों के साथ। तो इस तरह का जो ब्राह्मण था और उसके राक्षस था, उस राक्षस के साथ में किसकी से भेंट हुई? विजय की भेंट हुई। और उन्होंने क्या किया, उसके इतने पापी जन्म योनि के क्या किया, सिर्फ एक बार उठा के शिलाखंड को उसके सर से टच करा दिया। कराते ही क्या हुआ, वो सुंदर युवा बन गया। और जब तक वो ये कथा बता रहा था इतने में क्या हुआ, वैकुंठ से एक विमान आ गया, और उस विमान में बिठाकर उस सुंदर युवक को कहां ले गए? भगवत धाम। हरि बोल। गिर गोवर्धन की, गिरारी लाल की, गिरारी गोवर्धन की। तो ऐसे जो भगवान है गोवर्धन, यहाँ पर अनेकों कदंब और तमाल के वृक्ष हैं, और अनेकों भक्त यहाँ पर आते हैं और इन शिलाखंडों के साथ में क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं, अपना मस्तक रगड़ते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमको क्या प्राप्त हो, भजन करने की शक्ति प्राप्त हो। जिस प्रकार से ये लीला स्थलियों में लीला शक्ति होती है भगवान की, तो लीला शक्ति हम पर कृपा करेगी जिससे हम अपने भजन में प्रगाढ़ हो सकते हैं। तो ये है कथा कहाँ की? गोवर्धन की। और अब हम कथा सुनाते हैं आपको कुसुम सरोवर की। कुसुम सरोवर को सुमन सरोवर भी बोला जाता है, सुमन सरोवर। और यहाँ पर राधा रानी आया करती थी किस लिए? पुष्प चुनने के लिए, कृष्ण भगवान के और अपने गोपियों सखियों की डेकोरेशन, भगवान के ऑल्टर, इन सबको सजाने के लिए वो आती थी डेली यहाँ से पुष्प चुनने। तो आज बताते हैं कि आज भी राधा रानी और अनेकों देवी देवता, ब्रह्मा जी, शिव जी सुबह के वक्त ब्रह्म मुहूर्त में यहाँ पुष्प चुनने आते हैं। तो ये कोई नॉर्मल स्थान नहीं है, आप सोचें कोई किला है, छतरी बनी हुई है रेड फोर्ट टाइप में, अकबर का किला, टोडरमल का किला, सूरजमल का किला, ये किला नहीं है, इसको बनाया गया है, लेकिन ये बहुत ही दिव्य स्थान है जहां पर स्वयं राधा रानी पुष्प चुनने आती हैं। तो ये जो जल है ये भी बहुत पवित्र है, क्योंकि ये जो जल है ये कोई नॉर्मल जल नहीं है। कौन सा जल है, कौन बताएंगे जिन्होंने लास्ट टाइम? हाँ, यमुना जल। रॉन्ग, नहीं, कन्फ्यूजन, मानसी गंगा आ गए है, ये यमुना जल है। तो क्या हुआ, कथा कैसे आती है कि एक बार कार्तिक के समय सांझी का फेस्टिवल होता है। सांझी क्या होती है, जो घर होते हैं ना, घरों के अंदर अपने घर को गोबर से लीपा जाता था और उसके ऊपर डेकोरेशन बनाया जाता था। आप भी देखते हैं गांव में जाते हैं तो घरों के आगे दीवार पे क्या बनाते हैं, अलग अलग पेंटिंग्स बनाते हैं, हा? भगवान या लिखते हैं उसके ऊपर कुछ, और क्या करते हैं प्रभु जी, हाँ जी, बेल बनाते हैं और नाम लिखते हैं, शुभ लाभ, और बताएं माता जी क्या 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 करते हैं सांझी में, बाद में बात कर लेना, सांझी क्या करते हैं और सांझी में
फ्लावर्स बनाते हैं
पक्का? हाँ जी, हाँ वैसे लगाते हैं, तो इस तरह से, हाँ इस तरह से लगाते हैं सारी चीजें और डेकोरेशन करते हैं पुष्प से, और फिर बरसाना की जो स्त्रियां थी वो सब बनाती थी, और नंदगांव के लोग आकर क्या करते थे, निरीक्षण करते थे किसकी सांझी सबसे सुंदर है। तो राधा रानी और उनकी सखियां आई कहां, कुसुम सरोवर पे पुष्प चुनने के लिए। जब वो यहां पहुंची तो कृष्ण भगवान को पता चल जाता है, मनोभावना जानते हैं, वो बोले आ गई मेरी प्रिय प्रिय सी राधा रानी, यहाँ आ रही हैं, तो मैं क्या करूंगा आज, मैं गाय चराने वृंदावन नहीं जाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा यहीं रुकूंगा। तो बोले मेरे पेट में बड़ा दर्द हो रहा है बलराम, बलदाऊ मेरे पेट में बड़ा दर्द हो रहा है। तो बलदाऊ चले गए अपनी गैया और ग्वाल बालों को लेके, ठीक है कृष्ण तुम यहां रखो। तो वो यहां रहे अकेले, और राधा रानी उनकी सखियां जब आती हैं तो कटीले वृक्ष और पुष्प थे, तो उसपे राधा रानी तो थी, ऊंचा वृक्ष था तो उसको पुष्प को तोड़ने के लिए जंप कर रही थी, तो कृष्ण भगवान ने क्या किया, उसके ऊपर छुपके से चढ़ गए और उसके ऊपर चढ़कर वजन डाल दिया डाली के ऊपर, और उन्होंने जब डाली पकड़ के और फूल चुनना चाहा तो भगवान ने पैर हटा दिया और डाली ऊपर चली गई, और राधा रानी भी नीचे से साथ ओ ऊपर चली गई, है ना। जब राधा रानी ऊपर चली गई तो सारे के सारे सखियां बोली अरे ये क्या हो गया राधा रानी, नीचे आओ ललिता बचा लो, विशाखा बचा लो। राधा रानी चिल्लाने लगी और बहुत सुंदर दृश्य प्रकट हो गया, और सारी सखियां अष्ट सखियां जो थी, ललिता विशाखा हा? और कौन कौन सी हैं, चंपक लता और बताइए कौन कौन सी सखियां, अष्ट सखियां, तुंग विद्या सुदेवी रंग देवी और श्रीदेवी सुदेवी श्रीदेवी श्रीदेवी तो कलाकार है। तो इस प्रकार से जो थी बहुत सारी अनेकों सखियां वो थी वहां पर, और वो चिल्लाने लगी आओ राधा रानी आओ, तो राधा रानी ने क्या किया, ऊपर से अपने हाथ छोड़ दिए और सखियों के ऊपर डिपेंडेंट होकर कूद गई, नीचे कूदी तो उन्होंने उनको गोदी में ले लिया। फिर वो बोले कि तुम नीचे से ऊपर कैसे चली गई, लिफ्ट कहाँ से आई? तो बोले कुछ तो है यहाँ पर, इस पेड़ में शायद कोई देवता या राक्षस रहता है। तो उन्होंने ध्यान से निरीक्षण किया तो देखा कोई नीला नीला व्यक्ति इसमें चमक रहा है, बोले ओ श्याम सुंदर। तो बोले तो जंप करके नीचे आए, बोले नहीं नहीं मैं श्याम सुंदर नहीं हूं, मैं कौन हूं, मैं हूं बनमाली। कौन हूं? बनमाली मतलब वन का माली, वनमाली, बनमाली बोलते हैं ब्रज भाषा में, वन को बन, बनमाली, बनमाली हूं मैं, मेरे फूल चुराती हो, मैं छोड़ूंगा नहीं, राजा कंस से शिकायत करूंगा, बिना बताए फूल चुराए जा रहे हैं यहां से, और मैं चोरी के इल्जाम में तुमको अरेस्ट करा दूंगा। तो सारी बोली तुम तो बनमाली हो, हमारी राधा रानी कौन है, राधा वृंदावनेश्वरी, वृंदावन की देवी है, देवी को तुम अरेस्ट कराओगे, यो धूर्त यू काउंडर ऐसे कर बोलते हैं, गालियां देने लगे, और ऐसे करके उनको बोला। तो कृष्ण भगवान तो हंसते हंसते हैं, उनको तो ऐसी गालियां सुनना अच्छा लगता है, हाँ दो गालियां दो। तो फिर इस तरह से वो सुन रहे थे, और फिर थोड़ी देर बाद कृष्ण भगवान की बांसुरी चमकने लगी यहाँ साइड से उनकी ना करधनी से, तो राधा रानी ने देखा, और जब तक वो सखियों को समझा रहे थे मेरे यहाँ से चुराना नहीं, ये नहीं करना, मूछे लगा रखी है, पगड़ी बांध रखी है, राधा रानी पीछे से गई और बांसुरी खींच के बोली हरि बोल, ही इज नॉट बनमाली, ही इज वन बिहारी, बिहारी लाल की, ये वन माली नहीं है, ये कौन है, वन बिहारी है। ओ पकड़े गए, पकड़े गए। तो उन्होंने कहा लेकिन इस लड़ाई झगड़े में जितने पुष्प इकट्ठे किए थे वो सब नीचे गिर गए। अभी नीचे गिर गए तो राधा रानी रोने लगी, बोली हे कृष्ण ये तुमने क्या किया, मैंने अपनी सांझी के लिए जो पुष्प चुने थे वो सारे तो गंदे हो गए, और गंदे पुष्पों को लगा के मेरी सांझी तो बेकार होने वाली है। तब इस तरह से बोला तो कृष्ण भगवान बोले चिंता क्यों करती हो राधा रानी, यमुना जल में जाकर इनको हम धो लेंगे, साफ कर लेंगे। तो फिर सारी बोले कि अगर हम यमुना तक जाएंगे, अभी अब कल जाएंगे यमुना, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर यमुना तक जाएंगे तो हम टाइम हमारा निकल जाएगा, हम फेस्टिवल में हार तो क्या पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे, हैं उसमें एंट्री ही नहीं हो पाएगी हमारी। तो राधा रानी को जब इस तरह से देखा विलाप करते तो कृष्ण ने अपनी बांसुरी से क्या किया, इसी स्थान पे जो पीछे है जमीन पे ऐसे करके ठक मारा गड्ढा, और गड्ढा खोद के उसमें से क्या प्रकट कर दिया, यमुना जल। तो ये यमुना जल जो है सुंदर यमुना जल यहाँ प्रकट हुआ, और राधा रानी ने उसमें क्या किया, उनको पुष्पों को धोया। तो कृष्ण भगवान ने कहा आप टैक्स देना पड़ेगा, मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए जो है यमुना प्रकट कर दी, 15 किलोमीटर का डिस्टेंस टाइम सब बचाया है, तो अब कुछ तो मेरी भी मदद होनी चाहिए। क्या चाहते हो? मैं तुम्हारा डेकोरेशन करना चाहता हूँ। तुम सांझी का करोगी, मैं तुम्हारा करूंगा। तो राधा रानी नीचे बैठ गई, कृष्ण भगवान पीछे बैठ गए और उनके ना बालों में से गुथने लगे और फूल लगाने लगे, और राधा रानी उसको शीशे से देख रही थी और उनका ध्यान सारा केंद्रित था किसके ऊपर? बालों पे नहीं, कृष्ण के मुखारविंद पे, कि कितने सुंदर कृष्ण हैं और मुझसे इतना प्रेम करते हैं, और ये जानते नहीं कि ये जितना करते हैं उसका 1000 गुना 10000 गुना मैं इनसे प्रेम करती हूँ। और ये प्रेम विलाप चल रहा था, और इसी सीन को यहाँ पर एक पास में मंदिर है उसको बोलते हैं राधा बन बिहारी मंदिर, उसमें हम देख सकते हैं दर्शन किस तरह से भगवान कृष्ण राधा रानी की चोटी बना रहे हैं और फूल लगा रहे हैं उसके अंदर। और उसके बाद तुरंत राधा रानी कहती हैं, बहुत देर हो गई है, मैं अब क्या चाहती हूँ कि मेरी कोई सांझी सजाए, वरना मैं तो हार जाऊंगी, अब मेरे पास टाइम नहीं है। तो कृष्ण कहते हैं कि तुम चिंता मत करो राधा रानी, तुम अनेक लोगों की बरसाना में सांझी देखकर आओ और देखो किसने तुमसे अच्छी बनाई, तब तक मैं कुछ करता हूँ। और कृष्ण तो कौन है? स्वयं ब्रह्मांड नायक ईश्वरम परम कृष्णा सचिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदम सर्व कारण कारणम। ऐसे जो परम भगवान कृष्ण थे उन्होंने कौन सा रूप धारण किया? सखी का, नीले रंग की सखी ने नीले रंग की साड़ी पहनी, नीले रंग की चुन्नी, नीले रंग का मस्कारा, नीले रंग का आईलाइनर, जो भी होता है माताओं का, सब नीले रंग का लगाया और सब ब्लू कलर की सखी बनकर वहां पहुंच गए, कहां? बरसाना। और फिर उन्होंने सांझी बनाई और इतनी सुंदर सांझी कि सारे जो जज थे सब हैरान, हाँ इतनी सुंदर किसने बना दी राधा रानी, इस बार तो कमाल ही हो गया, ये किसने बनाई? कह रहे कोई नई मेरी फ्रेंड है, नई फ्रेंड है, सखी है, इसने बनाई है। तो कोई पहचान नहीं पाया कि वो जो नीले वस्त्रों में नीले रंग की सखी थी वो कोई और नहीं, कौन थे? वन बिहारी, वन बिहारी लाल की, कुसुम सरोवर की। तो ऐसा दिव्य स्थान है ये, तो आपको अच्छा लगा सुनकर? ऐसी बहुत सुंदर सुंदर अनेकों लीलाएं। और फिर इसके आगे एक स्थान पड़ता है जिसको बोलते हैं राधा कुंड और श्याम कुंड। तो पद्म पुराण में एक श्लोक आता है, इवन चैतन्य चरितामृत के अंदर भी लिखा है, यथा राधा प्रिया विष्णु तस्य कुंडम प्रियम तथा, पीछे बोलिए, यथा राधा प्रिया विष्णु तस्य कुंडम प्रियम तथा सर्व गोपेशु सेव्यका विष्णुरत्यंत वल्लभा। समझ आया? फिर से बोलते हैं एक बार, यथा राधा प्रिया विष्णु तस्य कुंडम प्रियम तथा सर्व गोपेशु सेव्यका विष्णुरत्यंत वल्लभा। इसका अर्थ है यथा राधा, जिस तरह राधा रानी प्रिया विष्णु, विष्णु को प्रिया है, तस्य कुंडम उसी प्रकार से उनके द्वारा बनाया गया कुंडम प्रियम तथा उतना ही कृष्ण को प्रिय है। सर्व गोपेशु, गोपियों में सबसे प्रधान नायिका कौन है? राधा रानी। सेव्यका, जो कि कृष्ण की सेविका है। विष्णु अत्यंत वल्लभा, और ऐसे राधा रानी को कौन प्रेम करते हैं? वल्लभ कौन है? विष्णु, कृष्ण प्रेम करते हैं। तो उसी प्रकार से जिस तरह राधा रानी को प्रेम करते हैं, स्वयं उनका कुंड कृष्ण को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। तो कहते हैं कि ये जो कुंड है ये किस प्रकार से यहाँ प्रकट होता है, बताते हैं कि हिंदी में कुंड को क्या, इंग्लिश में कुंड को क्या बोलते हैं? लेक, क्या बोलते हैं? और संस्कृत में कौन बोलते, संस्कृत स्कॉलर कौन है, संस्कृत में क्या बोलते हैं कुंड को, कौन बताएगा? टीचर्स, हे माता जी, यू डोंट नो, ओके, एनीबॉडी एल्स? रितु माता जी, संस्कृत में, हाँ, सरोवर नहीं, संस्कृत नहीं है, हिंदी है वो भी, हिंदी, संस्कृत में कुंड को क्या बोलते हैं, कौन बताएगा? एनीबॉडी इंटेलिजेंट टीचर प्रोफेसर? कुंड, पक्का? नहीं, वैसे कुंड ही कहते हैं, कुंडम बोलते हैं, अभी बोला हमने, तस्य कुंडम प्रियम तथा, कुंडम बोलते हैं, लेकिन एक प्रकार से उसको सार भी बोलते हैं, सारा, सरा, सरा, सॉरी, सरा, क्या बोलते हैं? सरा का उल्टा क्या होता है? रास। तो जो कोई कृष्ण या राधा रानी के रास में प्रवेश करना चाहता है उसको सरा या सारा ऐसे कुछ बोलते हैं, रास या रस, रस प्राप्त करना चाहता है या रास में प्रवेश करना चाहता है उसको राधा रानी के कुंड में क्या करना चाहिए? आचमन करना चाहिए। तो राधा कुंड में हम जाएंगे तो एक सबसे बड़ा इंस्ट्रक्शन है, उनको टच नहीं करना चाहिए, फीट से पैरों से नहीं छूना चाहिए। उनका आचमन जिस प्रकार से गोविंद कुंड में हमने किया, लेकर अपने मुखारविंद में और थोड़ा सिर जल पर जल सिर पर छिड़कना चाहिए, उसी से हमें स्नान करने का फल प्राप्त होता है। अनेकों लोग राधा कुंड में स्नान करते हैं, लेकिन श्री प्रभुपाद ने कहा कि जब तक हमारी योग्यता ना हो राधा कुंड में स्नान करने की, तो हमें स्नान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ आते हैं वृंदावन में भ्रमण करते हुए, तो उनके हृदय से जो लेफ्ट दो हर्ट के कंपार्टमेंट होते हैं, डॉक्टर सौरभ बताएंगे हमें, प्रभु जी डॉक्टर हैं, दो कंपार्टमेंट होते हैं हर्ट के, लेफ्ट कंपार्टमेंट एंड राइट कंपार्टमेंट। लेफ्ट कंपार्टमेंट से क्या प्रकट होता है? श्याम कुंड। और राइट से क्या प्रकट होता है? राधा कुंड। तो चेतन महाप्रभु कौन है? चैतन्य महाप्रभु है राधा कृष्ण का युगल अवतार, श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नाही अन्य। तो उनके ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, उसके लेफ्ट साइड से श्याम कुंड और राइट साइड से राधा कुंड प्रकट होता है। तो स्वयं राधा रानी और कृष्ण क्या लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट हैं। तो जिस तरह आप भगवान के मंदिर की मूर्ति को क्या नहीं करते, पैर मारते हैं कभी, तो ऐसे कुंड को कभी पैर मारना चाहिए। इसी तरह से कुंड विग्रह के रूप में कुंड प्रकट हुआ है। और ये बताते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे अच्छी जगह, सबसे पवित्र जगह, सबसे उत्कृष्ट जो है, बेस्ट नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत में बताया गया, वो है मथुरा धाम। कौन सी जगह? क्योंकि वहां पर कृष्ण का जन्म होता है। और मथुरा धाम से भी ज्यादा पवित्र क्या जगह है? वृंदावन। क्यों? वहां पर क्या करते हैं भगवान? लीला करते हैं, बाल लीला करते हैं, असुरों का वध करते हैं। और वृंदावन से भी ज्यादा पवित्र क्या है? गोवर्धन। क्योंकि गोवर्धन को भगवान ने अपने हाथ से 7 दिन तक धारण किया और उसको क्या बोला? हरिदास वर्यम, दासों में दास गोवर्धन। तो इस तरह से गोवर्धन जो है वो महान है। और गोवर्धन से भी पवित्र और उत्कृष्ट ब्रह्मांड में सबसे इंपॉर्टेंट जगह क्या है? राधा कुंड। बताते हैं इस ब्रह्मांड का सेंटर ऑफ पॉइंट, सेंटर ऑफ अवर एनर्जी इज राधा कुंड। तो वो जो सेंटर है इस ब्रह्मांड का, उसको कभी हमें पैर लगाना चाहिए, लेकिन फिर भी अनगिनत लोग उसमें स्नान करते हैं, थूकते हैं, कपड़े धोते हैं और अनजाने में करते हैं, लेकिन एटलीस्ट भक्तों को ऐसा नहीं करना चाहिए। या फिर गुरु आज्ञा दें कि तुम इस लेवल पर हो कि तुम्हें इसमें स्नान करना चाहिए। कहते हैं अगर किसी ने एक बार भी राधा कुंड में स्नान कर लिया, तो उसका डेफिनेट है कि उसे कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा इसी जन्म के अंदर। हरि बोल। राधा कुंड श्याम कुंड की। तो जो राधा कुंड है, इसका प्रकट कैसे होता है कि एक बार जिस प्रकार से कंस कौन थे? कृष्ण के मामा जी थे। मामा जी आपने किया था ना, मामा जी का एक रोल ना, स्वर्णिम प्रभु ने और दीपक प्रभु ने, कौन सा रोल था? चांद का दीवाला। मामा जी की है ये वैल्यू है, मामा जी ऐसे होने चाहिए, ऐसे बोलते हैं उसमें प्ले में। तो मामा जी कैसे होते हैं? बच्चे के जन्मदिन पे कुछ गिफ्ट भेजते हैं। तो कंस ने भी गिफ्ट भेजे, टॉयज, कभी अगासुर के रूप में, कभी पूतना के रूप में, टॉयज तो थे। और जब छोटे बच्चे को टॉयज दो तो वो क्या करता है? खेलता थोड़ी है, तोड़ देता है। ऐसे कृष्ण सोचते थे मेरे मामा जी ने टॉय दिया है, वो तोड़ देते हैं, फेंक देते, लो बकासुर, ये लो पूतना, ये लो अगासुर, ऐसे करके। तो इसी तरह से एक और उन्होंने एक टॉय दिया, उसका नाम था अरिष्टासुर, जो कि बैल के रूप में आया था। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि जो राक्षस के रूप में आते हैं उन्हें तो कृष्ण समझ जाते हैं, ये राक्षस हैं, लेकिन जब गोपाल जो गायों का पालन करते हैं उनके सामने जाएंगे बैल के रूप में, तो फिर कृष्ण उसको क्या करेंगे, अनजाने में समझ जाएंगे राक्षस नहीं है तो गाय है, और फिर मैं जाकर कृष्ण का वध कर दूंगा। ऐसा सोचते वरिष्ठासुर वृंदावन में प्रवेश करते हैं, और फिर कृष्ण से उनकी भिड़ंत होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, और कृष्ण क्या करते हैं? हंसते खेलते हैं, पहले तो गाय समझ के उसे माफ करते हैं, लेकिन अंत में जब समझ जाते हैं ये असुर है, उसकी पूंछ पकड़कर घुमाते हैं और ब्रह्मांड के चारों तरफ 84 कोस चक्कर लगा के भाई किसी ब्रह्मांड के किसी किनारे में फेंक देते हैं और वो मर जाते हैं। तो इसी प्रकार से जब गोपियां देखती हैं तो ताली बजाती हैं, श्याम सुंदर वाह वाह हरि बोल, श्याम सुंदर की जय, अरिष्टासुर वध लीला की जय। लेकिन थोड़ी देर बाद सारी सखियां बोलती हैं, श्याम सुंदर तुमने ये क्या किया, तुमने गाय का वध किया। एक तरफ तो अपना नाम बताते हो गोपाल, गायों का पालन करने वाले, गोविंद, गायों की रक्षा करने वाले, और एक तरफ खुद ही वध करते हो उनका, कैसे तुमने पाप कार्य किया। अब जाओ सारे तीर्थों में और सारे पुण्य नदियों में स्नान करो, उसके बाद ही हम मानेंगे तुम कौन हो, पवित्र हो। तो कृष्ण कहते हैं देखो, अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग है, जहां मैं खड़ा आता हूँ लाइन वहीं से शुरू होती है। ऐसे ही कृष्ण, एक्चुअली कृष्ण का डायलॉग है, उन्होंने तो कॉपी किया अमिताभ बच्चन ने। कृष्ण का क्या डायलॉग है? कृष्ण कहते हैं कि देखो मैं कहीं नहीं जाता हूँ, दुनिया मेरे पीछे आती है। तो देखो अभी मैं यहीं पर क्या करूंगा, एक सारे तीर्थ और सारे नदियों को, पवित्र नदियों को मैं यहाँ प्रकट करूंगा, और अपने पैर से ऐसे करके मारते हैं जमीन पे, तो एक गड्ढा बन जाता है, और उस गड्ढे के अंदर देखते हैं थोड़ी देर बाद यमुना नदी, गंगा नदी, गोदावरी, कावेरी, सारी नदियां प्रकट होती हैं, कहती हैं आज तो मजा आ गया, कृष्ण की सेवा करने का मौका मिल गया, चलो चलो सेवा करेंगे। और सारी नदियां प्रवेश कर जाती हैं उसके अंदर, और जब प्रवेश करती हैं तो कृष्ण उसमें स्नान करते हैं, कहते हैं राधा रानी संतुष्टि हो गई, अब तो मैं पवित्र हो गया। राधा रानी कहती है तो कमाल हो गया। लेकिन कृष्ण कहते हैं हमने तो कमाल किया, अब हमारा नंबर है, अब हम भी तो कुछ चाहते हैं। क्या चाहते हैं? कि देखो तुमने एक असुर की साइड ली है, उसी के कारण तो तुमने मुझे बोला स्नान करो। अब असुर की साइड लेने से तुम क्या हो गई हो? अपवित्र हो गई हो। अब तुम भी क्या करो? कुंड में स्नान करो। तो कहती है ठीक है, लेकिन तुम्हारे कुंड में तो हम स्नान नहीं करेंगे, तुम्हारा कुंड तो बेकार है, गंदा है। तो कृष्ण कहते हैं ठीक है अपना बना लो। तो कहते हैं ठीक है तो अपना बनाएंगे। तो क्या करती हैं? अपने बैंगल्स चूड़ियां निकालती हैं, और सारी सखियां 100,000 सखियां मिलकर क्या करती हैं? गड्ढा खोदती हैं, राधा कुंड जिसे कहते हैं। और फिर कुंड को खोद के तो कृष्ण पूछते हैं खोद तो लिया, जल कहाँ से लाओगी? क्योंकि जल तो मेरी इच्छा से आता है। कह रहे हैं ठीक है, यहाँ से थोड़ी दूर पे 5 किलोमीटर दूर मानसी गंगा है, हम जाएंगे मटके भर के। और हमारा तो आदत है ना, रोज कुएं से जल लाते हैं, नदी से जल लाते हैं, 3-3, 4-4 मटके भर के सारी सखियां लाएंगी, अभी 5 मिनट में पूरा सरोवर बना देंगे। तो सब जाती हैं मानसी गंगा, लेकिन थक जाती हैं, इतना सा भी जल नहीं आता कि उसमें पैर भी धोए जाए, तो स्नान क्या करेंगे। तो सारी सखियां कहती हैं हम तो थक गए। तो फिर सारे तीर्थ और सारी नदियां प्रार्थना करते हैं कि राधा रानी हमें भी अपनी सेवा का मौका दीजिए, हमें भी कृपा करने का, हमें भी अपनी कृपा करने का मौका दीजिए, हमें भी अपनी आपसे कृपा लेने का मौका दीजिए। तो राधा रानी कहती हैं ठीक है, अब तो हार ही गई हूं, थक गई हूं, तो चलो आ जाओ प्रवेश कर लो। तो सारे तीर्थ सारी नदियां राधा कुंड में भी प्रवेश करते हैं। और जब कृष्ण देखते हैं कि कोई भक्त हार गया है, क्या कर गया है? हार गया है। जब तक वो सोचता है कर्ता कौन हूं? मैं हूं। अहंकार विमूढ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते, प्रकृति क्रिया मनानी गुणे कर्मानी सर्वशा। प्रकृति के तीनों गुण में बंधकर वो व्यक्ति घूमता रहता है जब तक उसे लगता है कर्ता कौन हूं? मैं हूं। करने वाले कौन है? कृष्ण है। तो इसी प्रकार से राधा रानी को जब समझ आ गया करने वाले कौन है? कृष्ण है। तो फिर राधा रानी हार गई, नतमस्तक हो गई। तो फिर कृष्ण राधा रानी के कुंड में प्रवेश कर गए, और राधा रानी श्याम कुंड में प्रवेश कर गई, और दोनों क्या बोलने लगे? अरे कृष्ण तुम्हारा श्याम कुंड तो राधा कुंड से भी ज्यादा सुंदर है। और श्याम ने क्या बोला? कि राधा रानी तुम्हारा कुंड तो मेरे कुंड से भी अधिक सुंदर और पवित्र और खुशबूदार है। आने वाले समय में, युगों में लोग श्याम कुंड से ज्यादा राधा कुंड का नाम पुकारेंगे, है कि नहीं? आज भी आप बोलते हैं गोवर्धन में एक स्थान है तो क्या बोलते हैं आप? कभी कोई बोलता है श्याम कुंड, जबकि दोनों साइड साइड में है, लेकिन कोई बोलता है नहीं। जबकि श्याम मतलब कृष्ण ईश्वर, लेकिन उसके बाद भी लोग राधा कुंड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने बोला कि मेरे से ज्यादा तुम्हारा नाम मशहूर होगा, इसलिए बोर्ड पे भी लिखा होता है राधा कुंड। दिल्ली में कोई पूछे कहां जा रहे हो, बोलते राधा कुंड। बाबा जी कहां बन गए जाकर तुम? राधा कुंड। इस तरह से लोग बोलते हैं। तो राधा कुंड जो है बहुत ही पवित्र स्थान है, तो उसमें जाकर हमको क्या करना है? अभी हम जाएंगे और वहां पर परिक्रमा करेंगे। वहां पर रघुनाथ दास गोस्वामी जो हैं वो बैठ के भजन किया करते थे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत का वहां पर मंचन किया। 5 पांडव वहां बैठते हैं, और वहां पर अभी भी उनके वृक्ष हैं, 5 पांडव वृक्ष, पीलू वृक्ष, जिसने साक्षात प्रकट होकर कृष्णदास कविराज गोस्वामी को बताया कि चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं क्या थी। अनेकों लीलाएं वहां पर हुई हैं, क्योंकि अब रात्रि हो गई है और लोग मच्छरों से परेशान हैं। तो अब यहीं पर विराम देंगे, और फिर आगे की लीलाएं हम वापस आएंगे जब राधा कुंड से, तो अपने गेस्ट हाउस में हम उसको सुन सकते हैं। ठीक है, तो अभी यही समाप्त कराएंगे। श्री राधा कुंड श्याम कुंड की, गिरी गोवर्धन की, पतित पावन श्रील प्रभुपाद की, निताय निताय गौर प्रेमानंद हरि बोल। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा।